नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल की तीसरा पक्ष ऐप भुगतान नीति पर विचार करने संबंधी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को जारी निर्देश के मामले में बुधवार को आयोग और स्टार्टअप संगठनों के प्रतिनिधि निकाय ADIF से अपना पक्ष पेश करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने गूगल की अपील पर CCI और अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन को नोटिस जारी किया। गूगल ने न्यायालय की एकल पीठ के CEI को दिए गए निर्देश को चुनौती दी है। एकल पीठ ने गत सोमवार को प्रतिस्पर्धा आयोग को निर्देश दिया कि वह 26 अप्रैल तक गूगल की नई ऐप भुगतान नीति पर ADIF की आपत्तियों पर गौर करे। इसके पहले आयोग कोरम के अभाव का हवाला देते हुए इस पर विचार करने से इन्कार कर चुका है। देश में नवोन्मेषी स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधि संगठन ADIF ने कमीशन के आधार पर ऐप में खरीद की छूट और डाउनलोड की सुविधा देने की गूगल की नीति को चुनौती दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि आपूर्ति से जुड़ी मौसमी समस्याओं के कारण महंगाई बढ़ी है और जरूरी सामान की कीमतों में नरमी लाने के प्रयासों के साथ उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीतारमण ने ईंधन और प्राकृतिक गैस के दाम में कमी लाने के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में इनका आयात किया जाता है और कोविड तथा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में ईंधन के दाम ऊंचे हैं। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में स्वयं ईंधन पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती का निर्देश हमें दिया था। इसके कारण दीपावली के दौरान इस बारे में घोषणा की गई। उसके बाद जून 2022 में फिर हमने उत्पाद शुल्क में कटौती की। इन सब कारणों से ईंधन के दाम में कुछ हद तक नरमी आई। वित्तीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाएं लागू की हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने मासिक पुस्तिका में इस बात पर जोर दिया कि कॉरपोरेट कंपनियों को संगठन के भीतर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए प्रभावी नियंत्रण एवं कामकाज के संचालन की रूपरेखा का क्रियान्वयन करना चाहिए। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले SFIO ने बीते वित्त वर्ष में 24 मार्च तक 145 कंपनियों के खिलाफ 23 मामलों की जांच रिपोर्ट जमा करवाई। वहीं 2021-22 के दौरान उसने 29 कंपनियों से संबंधित 13 मामलों की रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी थी। मंत्रालय ने बताया कि SFIO की क्षमता बढ़ाई गई है और जांच एजेंसी ने अपने कामकाज को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं को लागू किया है और नोटिस तथा समन में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। निजी क्षेत्र की तेल गैस खोज और उत्पादन कंपनी SR ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयले की परतों में पाई जाने वाली मीथेन गैस परियोजना में अगले 1.5 से 2 साल में 2000 करोड़ रुपए का और निवेश करेगी। कंपनी इससे पहले रानीगंज ब्लॉक में 5000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। इसके तहत कंपनी ने 350 कुओं की खुदाई की और वह प्रतिदिन 9 लाख घन मीटर गैस का उत्पादन कर रही है। EOGEPL के CEO पंकज कालरा ने PTI भाषा से कहा कि 200 और कुओं की खुदाई के लिए अगले 1.5 से 2 साल में 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम मौजूदा कुओं से उत्पादन 9 लाख घन मीटर प्रतिदिन से 13 लाख घन मीटर प्रतिदिन करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। इसके अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस वर्ष फरवरी में एयर इंडिया की दुबई दिल्ली उड़ान के दौरान एक पायलट के महिला मित्र को कॉकपिट में जाने की अनुमति देने की घटना की जांच कर रहे DGCA ने एयरलाइन को जांच पूरी होने तक उस पूरे परिचालक दल से सेवाएं नहीं लेने का निर्देश दिया। ये घटना 27 फरवरी को हुई थी और दुबई दिल्ली उड़ान के चालक दल के एक सदस्य ने DGCA की शिकायत की थी। DGCA के एक अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया इस मामले में कैबिन क्रू की कोई भूमिका नहीं दिख रही, लेकिन जांच पूरी होने तक विमान के पूरे परिचालक दल की सेवा निलंबित रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का एकीकृत शुद्ध लाभ मार्च में समाप्त बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 42% बढ़कर 2671 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि बिक्री में सुधार, प्राप्तियां बेहतर रहने और अनुकूल विदेशी मुद्रा विनिमय गतिविधियों से उसका मुनाफा बढ़ा है। MSI ने इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की मार्च तिमाही में 1876 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी की आलोच्य तिमाही में शुद्ध बिक्री 26,749 करोड़ से बढ़कर 32,060 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। MSI को पूरे वित्त वर्ष 2022-23 में एकीकृत शुद्ध लाभ 8,211 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2021-22 में ये आंकड़ा 3,879 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की शुद्ध बिक्री भी 88,330 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,17,571 करोड़ रुपए पर पहुँच गयी। बीएससी पर कंपनी का शेयर 8,475 रुपए पर स्थिर रूप के साथ कारोबार कर रहा था। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का एकीकृत शुद्ध लाभ मार्च में समाप्त बीते वर्ष की चौथी तिमाही में 42% बढ़कर 2,671 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि बिक्री में सुधार, प्राप्तियां बेहतर रहने और अनुकूल विदेशी मुद्रा विनिमय गतिविधियों से उसका मुनाफा बढ़ा है। MSI ने इससे पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की मार्च तिमाही में 1,876 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।